25 सिंह अठासी का प्रातः क्लास 16 नंबर के रजिस्टर में 21 केस रिकॉर्ड चला है हमारे तीर्थ न्यारे जिस्मानी यात्रा और रूहानी यात्रा। इस पर ये गीत बनाया है भक्ति मार्ग वाले ने, जो पास्ट में हो गया है उसका गायन करते हैं। जो भी मनुष्य मात्र है उन सभी को जिस्मानी यात्रा का तो पता है, देखते हैं जन्म जन्मांतर से चक्कर लगाते आते हैं, उनकी बुद्धि में बद्रीनाथ श्रीनाथ द्वारा आदि आदि ही याद आता है। तुम बच्चों को भी ये जिस्मानी यात्रा आज याद थी और अभी भी याद है। तुमने यात्राएं जन्म जन्मांतर की हैं, अब तुम बच्चों की बुद्धि में रूहानी यात्रा का ज्ञान है। मनुष्यों का बुद्धि योग है स्थूल जिस्मानी यात्रा की तरफ। तुम्हारा बुद्धि योग है रूहानी यात्रा की तरफ। बुद्धि योग जाता है रूह की तरफ और उनका बुद्धि योग जाता है जिस्म की तरफ, तो रात दिन का फर्क हो जाता है, क्योंकि जिस्म की ही मूर्ति बनती है, चित्र बनता है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि जो चित्र बना है वो कोई चरित्र की यादगार है, और चरित्र बिना चैतन्य आत्मा के नहीं हो सकता। तो अभी तुम रूहानी यात्रा की तरफ कदम बढ़ाए रहे हो, ये वंडरफुल यात्रा घर बैठे करते हो। कोई समझ सकेंगे इस यात्रा को? जब धंधे धोरी याद में लग जाते हैं तो इतनी याद नहीं रहती। इतनी माना कितनी? जितनी बैठ के याद करते हैं, तो बैठ को याद करते हैं तो सूक्ष्म बिंदु आत्मा की तरफ विशेष अटेंशन रहता है, और धंधे धोरी में लग जाते हैं तो जिस्मानी यात्रा जिस्म की याद तो आती है, लेकिन रूह की याद कर्म करते भूल जाती है। तो फिर रूहानी यात्रा नहीं कहेंगे। रूहानी यात्रा कब? जब जिस्म के साथ साथ रूह भी याद रहे, चित्र के साथ साथ चरित्र भी याद रहे, और चरित्र करने वाली तो चैतन्य विचित्र आत्मा ही होगी। परंतु जब विचार सागर मंथन करने बैठेंगे तो अचिरी की याद आएगी। हमें यात्रा पर नाली भी बड़ी सहज है, बच्चे समझते भी हैं बरोबर, पति तो पावन बाप क्या करते होंगे। टाइटल क्या है बाप का? पति तो पावन। तो जब टाइटल है तो क्या करते होंगे? जरूर पतितों को पावन बनाने का धंधा करते होंगे। पावन बनाने के लिए जरूर यात्रा होगी। बिना यात्रा के पावन बन नहीं सकते। वो है स्वीट निर्वाण धाम, जहाँ की यात्रा हमको करनी है। वैसे भी कहते हैं बाबुल का घर मीठा, और निर्वाण धाम नाम क्यों दिया निर्वाण धाम? वहाँ वाणी का दम नहीं, वाणी से परे की स्टेज है। उस घर में वही बच्चे बुद्धि से स्थित रह सकेंगे और वैसे भी स्थित वही रह सकते हैं जो पूरे मरे हुए हैं देह अभिमान से, क्योंकि देह में ही वाणी निकलती है। तो वाणी से परे की स्टेज रूहानी स्टेज, निराकारी स्टेज, जहां रहे वहां की हमको यात्रा करनी, जिसको सभी भक्ति याद करते हैं, किसको याद करते हैं, ब्रह्मलोक को, मुक्ति धाम को। ये किसको नहीं मालूम है कि भगवान को हमारे पास आना है, वह हमको भगवान के पास जाना है। समझते हमारा गुरु अथवा हमारा बड़ा निर्वाण धाम अथवा अपने निराकारी वतन चला गया, अपने लिए नहीं समझते। किसके लिए समझते हैं? क्या हमारा गुरु चला गया? ब्राह्मणों की दुनिया में कौन चला गया? समझते हैं चला गया निर्वाण धाम, वाणी से परे की स्टेज में चला गया। अच्छा, वहां चला गया, फिर वहां जाकर क्या किया? क्या जाकर के बैठ गया? क्या हुआ वो कुछ भी पता नहीं, सिर्फ कह देते हैं पार निर्वाण गया, ज्योति ज्योति समाया। लेकिन जो कहते हैं भक्ति मार्ग में उसका अर्थ नहीं समझते। ज्योति ज्योति समाया का मतलब क्या हुआ? क्या कोई स्थूल ज्योति की बात है? स्थूल ज्ञान सूर्य है क्या जो उसकी स्थूल ज्योति होगी? ज्योति माने ज्ञान की ज्योति, जो ज्ञान की लय से परमपिता परमात्मा में भरी हुई है, तीनों कालों का ज्ञान। वो तीनों कालों का ज्ञान हम बच्चों के अंदर भी आ जाए तो क्या कहेंगे? कि ज्योति ज्योति समाया, लहर सागर में समा गई, ऐसे भी कहते हैं। गुदगुदा पानी में लीन हो गया, जैसे समुद्र से एक बूंद या एक चुल्लू पानी ले तो वो चुल्लू पानी का जो अस्तित्व है उसमें गुण तो वही होंगे जो सागर में गुण होंगे। सागर खारा होगा तो चुल्लू पानी भी खारा होगा, और वो चुल्लू पानी सागर में मिक्स कर दें तो क्या कहा जाएगा? सागर ही हो गया। तो आत्मा ऐसा नहीं है कि आत्मा कोई परमात्मा में लीन हो जाती है। हाँ, आत्मा के जो भिन्न भिन्न प्रकार के संस्कार हैं, स्वभाव है, संकल्पों की गति है, वाइब्रेशंस हैं, वो परमात्मा के वाइब्रेशंस में समाये जाते हैं। माना मन मना भव की स्टेज हो जाती है। मन किस में समा गया? मन के सारे संकल्प किस में डूब गए? जो परमात्मा का संकल्प, उसके संकल्प में सब आत्माओं के संकल्प डूब जाते। तो वो अर्थ हुआ ज्योति ज्योति में समा गई, बाकी कोई आत्मा परमात्मा में लीन नहीं हो जाती है। तो कुछ भी पता नहीं है कि ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। तो बुदबुदा सागर में लीन हो जाता है, इसका क्या मतलब हुआ? कि हर आत्मा के अंदर जो अपने अपने प्रकार के भिन्न भिन्न संकल्प चलते हैं, जो संकल्प चलते हैं वो मुख से वाणी में भी आते हैं, मुख से बुदबुदाते रहते हैं, अंदर बुदबुदाएं या बाहर बुदबुदाएं, तो वो अंदरूनी संकल्प बुद्ध बुद्ध के रूप में जो चलते हैं वो सारे के सारे सागर में अंत समय में समा जाते हैं। अब बाप समझाते हैं ये रूहानी यात्रा एक बार होती है। कौन सी रूहानी यात्रा? जिसमें मनुष्य आत्माओं के अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न संकल्प मन के अंदर चलने वाले वो एक में समाये जाते। इस अंतिम जन्म में ये यात्रा होती है रूहानी यात्रा अथवा आत्माओं की यात्रा कहें। पहले पहले तो बच्चों को ये निश्चय हुआ कि हम आत्मा हैं। अब अगर कोई कहे कि फलाना पार निर्वाण गया तो भी आत्मा गई ना, ऐसे तो नहीं कि परमात्मा गया। आत्मा गई, परमात्मा के लिए गया कहेंगे क्योंकि वह है बाप साजन और आत्मा है सजनीय। तो आत्मा जैसे कि फीमेल्स हैं और परमात्मा है साजन, तो साजन और सजनी का संबंध है, तो संबंध है। और संबंध मन समान बंधन, सम्मान संपूर्ण संपूर्ण बंधन, सम्मान समान। तो साधन सजनी का संबंध है के लिए दोनों को समान स्टेज वाला होना चाहिए। ऐसे नहीं एक सिर्फ निराकार हो और दूसरा साकार हो तो मेल नहीं होगा। दोनों ही समान स्टेज वाले। तो परमात्मा तो ज्योति बिंदु और आत्मा साकार शरीर धारण करने वाली, तो संबंध नहीं जुटेगा क्योंकि आत्मा और परमात्मा का संबंध तो सिर्फ एक ही है। कौन सा? बाप और बच्चों का। बच्चियां भी नहीं, आत्मा है सब मेल और परमात्मा उनका पिता, बाकी दूसरा कोई संबंध नहीं बनता। दूसरे संबंध कब बनते हैं? जब साकार में आते हैं। तो उन दूसरे संबंधों में जो बहुत गुह्य संबंध है, राग भरा संबंध है, जिसमें प्रीति की रीति निभाई जाती है, वो है साधन सजनी का संबंध। क्योंकि या तो पति सबसे जास्ती प्यारा होता है और या तो पिता सबसे जास्ती प्यारा होता है। पहले अपने से प्यार होता है, आत्मा अपनी पहले प्यारी होती है। अपने से पहले प्यार, फिर पिता या पति से प्यार। तो परमात्मा साधन बनता है आकर के सजनियों का। तो साधन कहाँ ले जाएगा? साधन सजनियों को अपने घर ले जाता है। क्यों ले जाता है? सजनी के घर रह जाए तो क्या बुरी बात है? सजनी के घर में क्यों नहीं रह जाते साधन? अपने घर में क्यों ले जाते हैं? है? अच्छा चलो, कोई नबी ले जाता हो, ससुराल में ही कोई रह जाता हो साजन, तो बुरा क्यों मानते हैं? है? हाँ, वहां आधीन होना पड़े। और फिर जो अपने रीति रस्म रिवाज हैं वो छोड़नी पड़े और जिसके आधीन हुआ वो अपना नहीं पड़े। तो यहाँ तो सजनिया तो सब रावण के आधीन है। तो साजन परमात्मा को क्या करना पड़े? उनको अपने घर ले जाना पड़े। अगर अपने घर नहीं ले जाए, ये लक्ष्य न दे, तो वो सजनिया चेंज होने वाली नहीं है। तो आत्मा जैसे कि फीमेल से है और परमात्मा है साजन। कहा जाता है जीवात्मा दुख पाती है, तो इस समय जब आत्मा जीव के साथ है, सजनी है, तो वो बाप को ढूंढती है जीव के साथ। जीव के बगैर तो शरीर, शरीर के बगैर तो जीव नहीं होता। सिर्फ बिंदु आत्मा बिना शरीर के बाप को कैसे ढूंढेगी? मेल अथवा फीमेल सभी सजनी है। वैसे मेल्स को कोई सजनी थोड़े कहेंगे, परंतु ये है बहुत गुह्य पेचीदा बातें कि यहाँ फीमेल से भी सजनी और मेल से भी सजनी। क्यों पेचीदा बात क्या है इसमें? इसमें गुह्य बात क्या है कि मेल से भी यहाँ सजनिया है परमात्मा बाप की, परमात्मा बाप फीमेल है या मेल है? वो तो मेल ही रहता है। तो मेल की सजनिया फीमेल होनी चाहिए, मेल से क्यों ना? अगर मेल से भी है तो भी उनमें कुछ न कुछ भक्ति मार्ग का अंश जरूर होता है। सात सीताएं हैं जो रावण की जेल में फंसी हुई है, लेकिन बाप के लिए नहीं कहेंगे कि वो रावण की जेल में फंसा हुआ है। हाँ, ड्रामा प्लेन अनुसार पतित देश में पतित तन में आता हूँ तुम बच्चों को छुड़ाने के लिए, पतितों को पावन बनाने के लिए। तो ये गुह्य पेचीदा बातें हैं। तुम अपने को शिव बाबा के पोत्र समझते हो, सजनी भी समझते, तो दूसरी तरफ पोत्र भी समझते, ग्रैंडसन। जबकि जिसमें हो तो इस हिसाब से पोत्र पोत्रियां भी ठहरे, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे और शिव बाबा के पोते। बाबा ने समझाया है तुम्हारा दादे की मिलकियत पर हक है। कोई बाप भले धनवान हो, बच्चे नालायक हो, उनको मिलकियत न देवे तो हो सकता है क्या कि बाप अपने बच्चे को मिलकियत न भी दे? कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। क्यों? क्योंकि बाप की कमाई हुई प्रॉपर्टी पर बच्चे का हक नहीं बैठता। बाप चाहे तो न दे, लेकिन लेकिन डैडी की प्रॉपर्टी तो बाप को देनी पड़ेगी। तो दादे की प्रॉपर्टी परंपरा से राजाई कुल में चली आई है। जो राजाई है, राजाई का वर्षा है, स्वाधीनता का जो वर्षा है, राजा किसी के अधीन नहीं होता। तो राजाई का वर्षा कहां से चला? संगम युग से परमात्मा बाप ने आकर के राजाई का वर्षा दिया राजयोग के द्वारा। ये राजयोग दुनिया में कोई सिखा नहीं सकता, ये राजाई का वर्षा दुनिया में कोई दे नहीं सकता। तो ये दादे की मिल्कियत है जो बापों का बाप है। सत्य त्रेता में तुम दादे की प्रॉपर्टी भोगेंगे। अभी तुम दादे से प्रॉपर्टी लेते हो, दादे की प्रॉपर्टी कितनी बड़ी जबरदस्त है। 21 जन्म तुम सदा सुख की प्रॉपर्टी लेते हो, सिर्फ एक दिन में भी जन्म में भी इतनी जबरदस्त है, जो कभी किसी धर्म में ऐसी प्रॉपर्टी किसी ने पाई नहीं। बाहुबल से हिटलर ने, नेपोलियन ने, मुसोलिनी ने कितनी भी ताकत लगाई दी हो, लेकिन विश्व के ऊपर कंट्रोलिंग पावर नहीं प्राप्त कर सके। तो ऐसी विश्व की बादशाही परमात्मा बाप आकर देते हैं, और साथ साथ 21 जन्मों के लिए भी प्राप्ति कराते। तो कितनी जबरदस्त कमाई है। परम पिता परमात्मा दादा है, और बाबा कहेंगे ब्रह्मा को, कहते हैं ये प्रॉपर्टी हम भी दादे से ले रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा तो सभी कहते हैं, प्रजापिता शिव, प्रजापिता कृष्ण ऐसे कभी नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रजापिता ब्रह्मा। तो तुम जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना दादे की प्रॉपर्टी मिलेगी। जैसे ये माता पिता जगदम्बा जगत पिता पुरुषार्थ करते हैं, तो जरूर इनका पुरुषार्थ सबसे जास्ती होगा। तो ऐसे बच्चों को भी पुरुषार्थ करना चाहिए। बच्चे जानते हम भी इस पुरुषार्थ से ऐसे ऊंचे बनते हैं। ये जाकर के दादे से फुल प्रॉपर्टी लेते हैं। कौन? जगत पिता और जगदम्बा। फुल प्रॉपर्टी माने विश्व की बादशाही। राजा ही प्राप्त करते हैं। तुम जानते हो वो बादशाही फिर कितना समय चलती है? कितना समय चलती है? आधा घंटे। तो पॉइंट तो अच्छा है, अगर इस प्रकार तुम कोई को भी समझाओ तो झट समझ जाएंगे। दो बाप तो जरूर है, प्रजापिता ब्रह्मा, इनको पिता तो सभी कहते हैं। और गॉडफादर को भी मानते हैं। क्या? कोई भी धर्म वाला हो आदम को भी मानेगा, सृष्टि का पहला पुरुष, और गॉड को भी मानेगा, एडम को भी मानेंगे और गॉडफादर को भी मानेंगे, दोनों को मानेंगे। इसलिए कैसे भी हैं, आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। जुदा नहीं मतलब क्या हुआ? किस आधार पर अलग अलग नहीं? क्या शिव शंकर एक हैं? हैं?
अलग अलग है।
आत्मिक स्थिति में जब तक प्रजापिता की सोल संपन्न न बने, उसके सारे ही संकल्प परमात्मा के संकल्पों में समा न जाए, तब तक जुदा कहेंगे या एक कहेंगे? तब तक कहेंगे शिव शंकर अलग अलग। और जब शंकर कहो, संगम जी कृष्ण कहो, प्रजापिता कहो, नारायण कहो, उसके सारे ही संकल्प परमात्मा बाप शिव ज्योति बिंदु के संकल्पों में समा जाए, तो क्या कहेंगे? एक। ऐसे तो आत्माएं अलग अलग होती है, हर आत्मा का पार्ट अलग अलग होता है, लेकिन ये सत्य रूपी रंगमंच पर अलग अलग पार्ट तब तक हैं जब तक संपूर्ण मन मना भव नहीं बने। पूरा मन मना भव हो जाए तो कैसी स्थिति हो जाएगी? कर्माति, कर्म से अतीत। कोई कर्म करने की दरकार नहीं, कोई पार्ट बजाने की दरकार नहीं। जैसे कि पांच तत्व स्वतः ही अपने आप कार्य कर रहे हैं, तो प्रजापिता को भी सब मानते हैं और गॉडफादर को भी सब मानते हैं। वो बड़ा है दादा, ब्रह्मा उनका बच्चा ठहरा, इनका दादी का ब्रह्मा का नाम तो बाला है। दूसरा पेज, विष्णु या शंकर को प्रजापिता नहीं कहेंगे, क्या कहा है? ये गलतफहमी हो जाती है कि शंकर प्रजापिता है। नहीं, शंकर को तो जनेऊधारी दिखाते हैं, जनेऊ तो ब्राह्मणों को होता है, ब्राह्मण तो तब होगा जब ब्रह्मा की औलाद बने। तो शंकर का पार्ट है, ब्राह्मणों की संगत भी दुनिया में कब से शुरू करें? ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर शंकर द्वारा विनाश, फिर विष्णु द्वारा पालन। तो ब्राह्मणों की संगत भी दुनिया की ही बात हुई ना। तीनों मूर्तियों का पार्ट अपने अपने टाइम पर उदा हुआ, तो कब से कहें कि शंकर द्वारा विनाश? विनाश ज्वाला रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड से प्रज्वलित हुई, तो कब कहें प्रज्वलित हुई? हाँ, वो तीसरी मूर्ति की, तो दूसरी मूर्ति की प्रत्यक्षता, शंकर की प्रत्यक्षता तब कहें जब ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में विनाश ज्वाला प्रत्यक्ष रूप धारण करे। ब्राह्मणों की दुनिया में विघटन शुरू हो, तो 76 का पीरियड बताया, घोषणा भी पहले से करवाई थी कि आने वाले 10 वर्षों में भारत से भ्रष्टाचार विकारों का अंत होगा और दुनिया का विनाश होगा। ये घोषणा कब करवाई? 66 मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद। तो शंकर को प्रजापिता नहीं कहेंगे, क्यों? क्योंकि शंकर तो विनाशकारी तो है, लेकिन शंकर पार्ट का नाम है और शंकर का अर्थ यह है मिक्स, एक आत्माकारी नहीं करती। ब्रह्मा की भी सोल कारी करती है उस शरीर के द्वारा, शिव की भी सोल कारी करती है, निशानियां दी हुई है तीसरा नेत्र शिव का, और चंद्रमा वो भी मस्तक में प्रवेश है, विराजमान दिखाया गया, और शरीरधारी की आत्मा स्वतः की भी। तो तीनों का मेल माना शंकर, कहते हैं ना वर्ण शंकर, तो मिश्रण, तो प्रजापिता को मिश्रण नहीं कहेंगे, वो तो एक ही बीज है। नहीं, व्यक्तित्व तो वो भी एक है, आत्माएं तीन कार्य करने वाली है, शंकर, लेकिन प्रजापिता वो आदि का व्यक्तित्व का नाम है जिसने ज्ञान का पहले पहले बीजारोपण किया, उसको ज्ञान देने वाला कोई नहीं, लेकिन साकार स्वरूप में वो ज्ञान देने वाला है। तो आज में बीजारोपण जिसने किया सबसे पहले, वो हुआ सारे जगत का पिता। फिर उसके बाद टाइटल मिल गया प्रजापिता ब्रह्मा का दादा लेखराज को, तो जो टाइटल धारी हुआ प्रजापिता ब्रह्मा दादा लेखराज, उसके द्वारा फिर वो आत्मा आदि वाली जो शरीर छोड़ गई, जिसके द्वारा ज्ञान का बीज रोपण किया गया पहले पहले, वही आत्मा आकर के दोबारा जन्म लेती है, ब्राह्मण बनती है। तो शरीर तो बदल गया ना, तो जो शरीर बदल गया तो कार्य भी बदल गया। आज का बीज रोपण का कार्य वो तो दूसरे शरीर का था। पिता का कार्य होता आज में बीज बोना और अंत में वर्षा देना। तो जो काम करे वो नाम धारण करे, और जब तक काम नहीं करे तब तक नाम कैसे पड़ जाएगा? शास्त्रों में जितने भी नाम है किस आधार पर? काम के आधार पर। दुर्योधन दुशासन तो दुष्ट कर्म किया होगा, दुष्ट शासन किया होगा तो नाम पड़े हैं? हाँ, तो ऐसे ही प्रजापिता तब नाम कहे जब कोई काम किया हो। तो पहला काम क्या किया? बीज बोया, तो बीज रूप आत्मा हो गई। बीज से पहले वृक्ष में कुछ भी नहीं होता, सबसे पहले बीज और सबसे अंत में भी वृक्ष में बीज ही प्रत्यक्ष होता है। देखा होगा कि कोई भी फसल पैदा की जाती है, बाग लगाया जाता है, तो जो पहला पहला फल पकता है उस पहले पहले फल का पहला बीज वो बोने के लिए बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। तो ऐसे ही ये मनुष्य सृष्टि रूपी फसल है, मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, इसमें भी सबसे पहला जो बीज पकता है वो कौन सा हुआ? प्रजापिता। तो प्रजापिता को शंकर, यानी शंकर को प्रजापिता का टाइटल नहीं दे सकते, कब तक नहीं दे सकते? जब तक ब्रह्मा तो विष्णु न बन जाए, क्योंकि शंकर है मिश्रण है तो ब्रह्मा की भी तो सोल कार्य कर रही है। तो ब्रह्मा को क्या बनना पड़े? विष्णु बनना पड़े। तो ब्रह्मा तो विष्णु बन गया, तो फिर बाकी कौन रह गया? फिर तो शंकर। लेकिन शंकर जो है जब ब्रह्मा विष्णु बन जाए तो वो जगत का पिता माने सारे जगत की पांच
मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त कर लेती है।
तो कहेंगे प्रजापिता, अच्छा चलो 500 करोड़ नहीं तो 500 करोड़ की बड़ी दुनिया का जो छोटा रूप है 108 बीज रूप आत्मा है, जिन 108 बीजों में सारी सृष्टि का चरित्र समाया हुआ, तो वो 108 बीज रूप आत्मा है उसको अपना बाप मान ले तो भी क्या कहेंगे कि वो प्रजा का पिता है। अच्छा 108 न मान ले, 108 के भी जो बीज हैं कितने? 8 या 9 अष्टरत्न नवरत्न, वो उस बाप को अपना बाप स्वीकार कर ले, उसको गॉड फादर के रूप में स्वीकार कर ले तो भी कहेंगे कि वो पिता है सारी प्रजा का, क्योंकि सब धर्मों के जो भी मुख्य बीज हैं उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया। लेकिन ब्राह्मणों की दुनिया में अभी अव्यक्तवाणी में स्थिति क्या बताई कि 100 की माला तो फिर भी 90% बन जाती है, वो 100 तो अपने संकल्पों को बाप के संकल्पों में फिर भी कभी कभी मर्ज कर लेते हैं, लेकिन 8 में गड़बड़ बहुत है। 8 जो है वो बहुत ऊपर नीचे हो रहे हैं, वो एक बाप के संकल्पों में अपने संकल्पों को मर्ज करने के लिए तैयार नहीं होते, खुद भी ऊपर नीचे होते हैं और अपने फॉलोअर्स को भी ऊपर नीचे कर देते। तो जब आंखें ही उसके बीज बाप पर स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं तो वो प्रजापिता तब तक नहीं कहा जा सकता। तो शंकर को अभी प्रजापिता नहीं कह सकते और विष्णु को भी प्रजापिता नहीं कह सकते, तो ब्रह्मा तो विष्णु ब्रह्मा माना बड़ी माँ, माँ के रूप में जो पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, माँ का काम होता है पालना करना, जन्म देना, स्थापना करना। तो प्रजापिता शंकर व विष्णु को नहीं कहेंगे, सूक्ष्म वतन में तो रचना नहीं रचेंगे, कहे कि प्रजा की, और प्रजा कैसी रची जाएगी, कोई भिखारी प्रजा तो नहीं रची जाएगी। प्रजा कौन सी रची जाएगी, नई दुनिया की जो नई सृष्टि बनेगी उसमें प्रजा कैसी होगी, यथा राजा तथा प्रजा। राजा कैसा होगा, निर्विकारी, तो प्रजा भी कैसी होगी, निर्विकारी। अधूरे ब्राह्मणों की नहीं बात है, अधूरा ब्राह्मण माना हाफ कास्ट ब्राह्मण, और हाफ कास्ट ब्राह्मण होगा तो जरूर मनसा वाचा कर्मणा तीनों से पक्का भाई बहन नहीं बन पाया होगा। तो पक्के भाई बहन जब बन जाएं, तब कहेंगे नई सृष्टि की रचना शुरू हुई। तो बोला सूक्ष्म वतन में तो रचना नहीं रचेंगे, सूक्ष्म वतन कोई ऊपर की बात तो है नहीं। सूक्ष्म वतन का मतलब ही क्या है, मनन चिंतन मंथन की स्टेज है, लेकिन प्रैक्टिकल में कोई सृष्टि अभी नहीं रची गई। तो ब्रह्मा ही जरूरी यहाँ ब्राह्मण रचते होंगे, ब्राह्मण कहाँ रचना पड़े, साकार सृष्टि पर। और ब्राह्मण कहाँ किसे जाता है, ब्रह्मा की औलाद माना जैसा ब्रह्मा ने कर्म किया वैसे फॉलो फादर, ऐसे नहीं कहा कि जैसे शंकर ने कर्म किए वैसे कर्म करना है। अद्वैतवाणी में बोला शंकर को फॉलो नहीं करना है, मास्टर शंकर बनने का पुरुषार्थ नहीं करना है, पुरुषार्थ क्या करना है, मास्टर ब्रह्मा बनने का पुरुषार्थ करो, ब्राह्मण बनो। करणहार का पार्ट और करावनहार का पार्ट, तो बाप ने दोनों पार्ट बजाए, एक पार्ट बजाया पहले कौन सा, करणहार, किसके द्वारा, ब्रह्मा द्वारा। तो ब्रह्मा ने जैसे कर्म किए वैसे कर्म, कर्मों में फॉलो हमें ब्रह्मा को करना है, और डायरेक्शन में फॉलो बाप को करना है, उल्टा नहीं कर देना कि बाप जो कर्म करता है वो कर्म हम करें और ब्रह्मा को फॉलो करने लग पड़े डायरेक्शन में। इसलिए मुरली में पहले ही डायरेक्शन दे दिया, क्या डायरेक्शन दिया, हाँ बात मेरी मानो, तो अंतर हुआ ना, बात मेरी मानो ये कहने वाला कौन, सुप्रीम सोल प्रजापिता के थ्रू, मेरी बात मानो मानी मेरे डायरेक्शन पर चलो। तो ये बात मानना या डायरेक्शन मानना जो है ये फॉलो करना तो मेरे लिए, और कर्म में फॉलो करना ब्रह्मा बाप, तो उन कर्मों को फॉलो करो, वो कर्म स्मृति में लाओ, शंकर को फॉलो नहीं करना, शंकर का काम शंकर करता रहे, हमें मास्टर शंकर बनने का पुरुषार्थ नहीं करना है। तो ब्रह्मा ही जरूरी यहाँ ब्राह्मण रचते होंगे, ऐसे नहीं कि शंकर ब्राह्मण रचेगा, क्या शंकर का काम ब्राह्मण रचने का नहीं है। ब्रह्मा मुख कमल से परमपिता परमात्मा ने ब्राह्मण संप्रदाय रचे, किसके मुख कमल से, ब्रह्मा मुख कमल से, जैसे कहेंगे क्राइस्ट ने क्रिश्चियन संप्रदाय रची, ऐसे कहेंगे क्राइस्ट से क्रिश्चियन, बुद्ध से बौद्ध, तो ऐसे ही मोहम्मद से मुस्लिम, तो ऐसे ही ब्रह्मा से ब्राह्मण। तो वो संपूर्ण ब्राह्मण रच गए हैं, अभी नहीं रचे गए हैं। जनेऊ माना द्विज, तो द्विज बन जाएं तो पक्की स्मृति आ जाए कि हम ब्राह्मण, द्विज मन दूसरा जन्म भी हो जाए, Who am I? ये पक्की स्मृति आ जाए कि मैं आत्मा कौन सा देवता विशेष बनने वाली आत्मा हूँ, तो पक्का बुद्धि में बैठ जाए कि हम आज सनातन देवी देवता धर्म के हैं और थे। जब तक ये स्मृति नहीं आती है Who am I? तब तक फुल कास्ट ब्राह्मण नहीं बने, अधूरे ब्राह्मण। और फुल कास्ट ब्राह्मण माने देवता, कहते भी है ब्राह्मण को देवता, ब्राह्मण देवता। पूजा किसकी करते हैं? और जातियों की पूजा नहीं करेंगे, ब्राह्मणों की पूजा करेंगे। तो पूजा का आधार क्या? प्योरिटी। वो प्योरिटी जब तक नहीं आई है तब तक भक्ति मार्ग की पूजा तो भले करवा लो, बाकी जो वास्तविक पूज्य रूप है वो धारण नहीं किया। जैसे कहेंगे क्राइस्ट ने क्रिश्चियन संप्रदाय रची, इब्राहिम ने इस्लाम संप्रदाय रची, तो नाम तो आता है, सबका रचयिता तो हुए। शंकराचार्य ने भी रचना की, हर एक झाड़ में टाल टालियां तो होती है, तो ये है बेहद का झाड़। इनका रचयिता अथवा बीज रूप तो मशहूर है, नामी ग्रामी है। कौन है? इनका बीज है ऊपर में, ऊपर में बीज कौन है? झाड़ के चित्र में बीज किसको दिखाया गया? बाकी टाल टालियां सभी यहाँ ही जाएंगे। जार के चित्र में जब आत्मा वापस परमधाम जा रही है बीज रूप स्टेज में, तो उन आत्माओं के जत्थे के बीच किसका चित्र दिखाया है? शंकर का चित्र दिखाया है। जब बीज रूप स्टेज में सब आत्माओं को बना लिया, आत्मिक स्टेज में सब आत्माएं हो गई, तो देहभान छूट गया ना, तो देहभान छूट गया तो वो पिता हुआ। सबने उसे अपना पिता स्वीकार कर लिया। जब तक देह भान नहीं छूटा है तब तक प्रजापिता को सब पिता स्वीकार नहीं करेंगे। एक होता है दिल से स्वीकार करना और एक होता है सिर्फ कागज में लिख के दे देना या मुख से कह देना, वो बात अलग होती है। तो दिल से स्वीकार करें कि हम सबका बाप है, धर्म पिताओं का भी बाप है। तो फाउंडेशन ऊपर में है, बीज रूप मशहूर है, नामी ग्रामी है, बीज है ऊपर में। बाकी टाल टालियां सभी यहाँ कहेंगी, वो सारे मनुष्यों की रची हुई रचना है। कौन सी टाल टालियों की? तो ये ब्रह्मा कुमारी संस्था बीज रूप बाप ने स्वयं रची है क्या? इसका रचयिता कोई जड़ नहीं है। जड़ का रूप भी स्थूल होता है, बड़ा होता है, शाखाओं का रूप भी बड़ा होता है, स्थूल होता है, पत्ते भी बड़े होते हैं, लेकिन बीज तो बहुत छोटा होता है। तो बीज रूप बाप ने स्वयं ब्रह्मा कुमारी संस्था रची। कब रहती है? यज्ञ के आदि में जो बीज रूप परमपिता परमात्मा ऊपर में रहते हैं, ऐसे नहीं सभी ताल तालियों का बीज रूप ऊपर में है क्या? ताल तालियों का बीज रूप नहीं, तो ये बड़ी महीन बातें हैं। ताल तालियों के बीज कहाँ हैं? हैं? हाँ, वो मध्यम स्टेज में हो सकते हैं, लेकिन सबसे ऊंची स्टेज में वो नहीं हो सकते। पुरुषार्थ की भी स्टेज उनकी एकदम ऊपर ऊपर नहीं कहेंगे। परमपिता परमात्मा को हमेशा ऊपर में याद किया जाता है, क्राइस्ट को ऊपर में याद नहीं करेंगे। क्राइस्ट को कहाँ याद करेंगे? हाँ, हाँ नहीं, याद क्यों नहीं करते हैं? चित्र जिसका बनाया जाता है, चित्र किस लिए रखा जाता है? जहाँ भी गिरजाघर होगा तो चित्र किसका टांगेंगे? क्राइस्ट का या पोप का? तो जिनका चित्र टांगा जाता है वो किस लिए टांगा जाता है? स्मरण करने के लिए, महिमा करने के लिए, दर्शन करने के लिए, तो याद नहीं आएगा। परमपिता परमात्मा का नाम रूप देश काल तो एक ही है, वो कभी बदलता नहीं है। तो ये बाप बैठ अच्छी रीत समझाते कि वो नाम रूप देश काल एक कौन सा है जो कभी बदलता ही नहीं। माना वो तो है बीज, तो बीज है तो जरूर बीज रूप कहाँ रहेगा? ऊपर ही रहेगा। बीज बना हल्का फुल्का, नजीबुल्ला भाई का नाम क्यों दे रहे हैं? ये नजीबुल्ला से तुम्हारे शिव बाबा हैं जो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। मोहम्मद साहब का अच्छा कैसे याद करें? मतलब उन्हें याद करना जरूरी है, है? हर धर्म में दो फेरे होते हैं क्या? जैसे देवी देवता सनातन धर्म के भी दो छेड़े हुए, देवता धर्म और क्षत्रिय धर्म, ऐसे ही इस्लाम धर्म के भी दो छेड़े, कौन कौन से? इस्लाम और मुस्लिम। ऐसे ही बौद्ध धर्म के भी दो छेड़े, हीनयान और महायान। ऐसे ही जैन धर्म के भी दो छेड़े, श्वेतांबर और दिगंबर। क्रिश्चियंस में भी दो छेड़े, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट को मानने वाले, रशियंस और अमेरिकन्स। रशियंस जो है वो गिरजाघर को, बाइबल को महत्व नहीं देते, खुदा को महत्व नहीं देते उतना, और वो महत्व देते हैं। तो हर धर्म के कितने छेड़े हो गए? पहले पहले दो छेड़े, दो भाग हो गए। तो ऐसे ही जो देवी देवता सनातन धर्म होता है उसमें भी दो प्रकार के मणके हैं। कौन कौन से दो? एक क्षत्रिय धर्म की विशेष आत्मा है और दूसरी देवता धर्म की विशेष आत्मा है। ठंडी कौन होंगी और गर्म कौन होंगी? देवता है होते हैं ठंडे और क्षत्रिय होते हैं गर्म। सूर्यवंशी कौन हुए या चंद्रवंशी कौन हुए? उल्टा नहीं हो रहा है। संगम युग में तीनों धर्मों का फाउंडेशन लगता है। परमात्मा बाप आकर के ब्राह्मण धर्म भी रचते हैं, क्षत्रिय धर्म भी रचते हैं और देवता धर्म भी रचते हैं। तो जैसे मोहम्मद का चित्र नहीं है, उसका कारण क्या है? कि उन्होंने अपना चित्र लेने नहीं दिया। क्या वो ज्यादा तीखे हुए, नियमों पर ज्यादा कट्टर बन गए? तो ऐसे ही ब्राह्मण क्षत्रिय या देवता धर्म की जब स्थापना होती है तो कोई ऐसी भी आत्मा निमित्त बनती है जो सब धर्मों का विनाश करने के लिए निमित्त कही जाती, तो उसको अपने उसूलों पर ज्यादा कट्टर बनना पड़े। त्रिमूर्ति के चित्र में सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट कौन दिखाया गया? शंकर। चित्र तो है लेकिन दिगंबर ही है ना, नंगा चित्र है ना, कि कपड़े वाला है, नंगा नंगा माना निराकारी है, लेकिन स्टेज कैसी निराकारी। बाप ने डायरेक्शन दिया, क्या डायरेक्शन दिया? इस देह को न देखो, अपनी देह और देह के संबंधों की दुनिया खलास, तो नहीं देखना, स्थित रहना। और इस बात में ब्रह्मा स्थित नहीं रह सके, तो इसी तरह सब धर्मों में यही बात चलती। मोहम्मद ने क्या किया? मूर्तियों को तोड़वा दिया, खंडन करवा दिया। तो मूर्तियों को खंडन कौन करवा सकता है? जो खुद अपनी मूर्ति को कोई विशेषता कोई महत्व न दे। तो ऐसे ही है। तो परमपिता परमात्मा का नाम रूप देश काल तो एक ही है। नाम क्या है? नाम है शिव। रूप क्या है? निराकार। निराकार है तो जरूरी निराकारी स्टेज में ही रहेगा। तो ऐसा रूप है। और देश क्या है? निराकारी देश। जब निराकार है तो कौन से देश में रहेगा? देह और देह के संबंधों की दुनिया में रहेगा? नहीं। तो ये स्थूल बात है या बुद्धि से उस स्टेज में रहने की बात है? बुद्धि से उस स्टेज में टिकने की बात है। उसका निराकारी देश है। और काल न कलयुग में रहेगा और न सतयुग में रहेगा। कहाँ रहेगा? संगम युग। वो एक ही संगम युग में आता है और दूसरे किसी युग में प्रत्यक्ष नहीं होता है। कौन? शिव परमात्मा। इस फिर बोल दिया, इस सृष्टि पर सदा कायम तो कोई चीज है नहीं। सदा कायम तो एक शिव बाबा ही है क्या? तो ये क्यों बोल दिया? तो जरूर वो जिसमें प्रवेश करता है वो निराकारी स्टेज वाला बनने के बावजूद भी इस सारी सृष्टि पर सदा कायम रहता है। बाकी ज्योति बिंदु की बात नहीं है। और जिस रूप में कायम रहता है उसमें वो निराकारी स्टेज में रहता है, विशेष आत्म के स्टेज में रहता है, क्योंकि आत्म के स्टेज में रहकर ही शास्त्रों की सच्चाई लिखी जा सकती है, वरना तो शास्त्रों में सच्चाई होती नहीं। जो देवहानि की स्टेज में रहते हैं वो कविता नहीं कर पाते। कवि और रवि, इनका काम क्या है? हैं? हाँ, ज्ञान की स्टेज में रहना। देवहानि की स्टेज में ये नहीं होते। तो ये बाप अच्छी रीति समझाते, तुम बच्चे जानते हो हम अब पतित से पावन बन रहे हैं, सदैव एक रस नहीं रहते। कौन? हम आत्मा रूपी जो बच्चे हैं वो कभी एक रस तो कभी दूसरे रस में, एक रस स्टेज में नहीं रहते। ऐसे नहीं कि सारे ध्रुव तारा बन जाएंगे, कुछ न कुछ अपना स्थान बदलते रहते। कोई सितारा किसी स्थान पर, समय बदलता रहता है, स्थान भी बदलता रहता है, और साथी भी सितारों के बदलते रहते हैं। लेकिन एक ही ध्रुव तारा है जो न स्थान बदलता न साथी बदलता, जो जितनी दूर रहने वाला है वो उतनी ही दूर सितारा रहेगा। किससे? ध्रुव तारे से। ऐसे नहीं कोई सितारा नजदीक आ जाएगा और कोई सितारा कभी दूर हो जाएगा। तो बताया कि पतित पावन तुम बच्चे बन रहे हो, एक रस सदैव नहीं रहते हो। अगर एक रस सदैव रहे तो पतित बनेंगे ही नहीं। पतित कब बनते हैं? कभी एक रस में डूबे, कभी दूसरे के रस में डूबे, तो उससे क्या होता है? ऊपर नीचे स्टेज हो जाती है संग के रंग से। तो तुम बच्चे एक रस सदैव नहीं रहते हो, पहले 16 कला संपूर्ण होते हैं, फिर 14 कला। तो कलाएं कहते हैं ना, सतयुग के बाद फिर हम नीचे आते रहते हैं। तो इस समय हम बिल्कुल ऊपर जाते हैं, यह हुआ ऊपर जाने का रास्ता, और वो हुआ नीचे आने का रास्ता। कौन सा? अनेक रसों में रहना, वो हुआ नीचे आने का रास्ता, और ये हुआ एक के रस में डूबे रहना, ये हुआ ऊंच जाने का रास्ता। पतित कैसे बनते हैं और पावन कैसे बनते हैं, वो दोनों तरीके अब हमारी बुद्धि में आ गए। इस समय हम बिल्कुल ऊपर जाते हैं। तो इनकी महिमा बहुत भारी है। इनकी महिमा है, पतित पावन एक है, याद भी सभी एक को करते हैं। जब एक को याद करते हैं तो इनकी क्यों कहा, बहुवचन में क्यों बोला है? कि शरीर से तो एक ही होता है लेकिन आत्माएं दो हैं, एक सुप्रीम सोल गॉडफादर और दूसरा प्रजापिता आदम या एडम आदिदेव। तो पतित पावन एक है, सब एक को याद करते हैं, परंतु पूरा न जानने के कारण कोई राम कोई कृष्ण देहधारियों को याद कर लेते हैं। हैं? भक्ति मार्ग में कहते हैं तू ही राम है, तू ही कृष्ण है, तू ही शिव है। इस लोक बनाए के रख दिया, उसमें सब देवताओं के नाम इकट्ठे कर लिए कि सब तू ही तू है। लेकिन उसके रहस्य को भी तो समझना चाहिए कि सब एक एक, एक जैसे कैसे हो जाएंगे। तो अब समझ में आया कि परमात्मा का जो पार्ट है वो पार्टधारी ऐसा स्वरूप है जिसमें राम की सोल भी कार्य करती, तो कृष्ण की सोल भी कार्य करती, तो ब्रह्मा की सोल भी कार्य करती, नारायण की सोल भी, वो बात एक ही पड़ जाती है। जो प्रैक्टिकल कार्य करने वाला व्यक्तित्व तो है, पर्सनालिटी है, वो एक है लेकिन उसमें कार्य करने वाली आत्माएं अलग अलग। तो राम और कृष्ण देहधारियों को याद कर लेते हैं पूरा न जानने के कारण, क्योंकि इस बात में भूले हुए हैं कि पतित पावन कौन है। भक्तों की ही बात नहीं है कि वो भूले हुए हैं, ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में भी, आधार मूर्तों की दुनिया हो चाहे बीज रूप आत्मा हो, ब्राह्मणों की दुनिया हो, उसमें भी ये बात भूल जाते हैं कि इस तन में पतित पावन कौन है। क्या शंकर पतित पावन है? है? शंकर पतित पावन नहीं है, ब्रह्मा पतित पावन नहीं है। पतित पावन कौन है? शिव, सुप्रीम सोल। लेकिन उस सुप्रीम सोल बिंदु को अलग कर दो और वो जिसने आया हुआ है उसको अलग कर दो तो पतित पावन नहीं। पतितों को पावन संग के रंग के बगैर नहीं बनाया जा सकता। तो इस बात में भूल गए, पतित पावन कौन है जरूर एक को कहना पड़े। क्या कहना पड़े? एक बिंदी पतित पावन है, बाकी 500 करोड़ बिंदी है वो पतित पावन नहीं। कैसे पता चलेगा? बिंदी बिंदी तो सब एक जैसी, एक बिंदी पतित पावन है बाकी बिंदियां पतित पावन नहीं है, किसको याद करोगे? कौन सी बिंदी को याद करेंगे? है अच्छा, मनुष्यों की बिंदी तो चलो थोड़ी है, गिनने में आ सकती है। कीट पशु पक्षी पतंगे सबकी आत्माएं कैसी हैं? बिंदु। तो कैसे पता चलेगा कि कौन सी बिंदु पतित पावन है, कौन सी बिंदु को याद कर रहे हैं? ऐसा ना हो गड़बड़ घोटाला होता रहे, नीचे वाले बिंदु को याद कर लें और जो सबसे ऊंचा है उसको छोड़ दें। और छूट तो जाता ही है, क्योंकि अपनी अवस्था जब ऊपर नहीं उठती है, पांच तत्वों के आकर्षण से ऊपर नहीं जा पाती है, तो बुद्धि जब ऊपर ही नहीं पहुंची तो कौन से बिंदु को याद किया है? नीचे वाले को। फिर बोला कि आत्मा शरीर के बगैर जैसे जड़ है, तो जड़ को याद करेंगे तो बुद्धि कैसी बनेगी? जड़। तो इब्राहिम बुद्ध कहती कि बुद्धि कैसी बनी? जड़ बुद्धि बन गई, जीवन मुक्ति विचारे नहीं पाए सके। तो फायदा क्या हुआ? तो जरूर एक को कहना पड़े, सिवाय तुम बच्चों के और कोई की बुद्धि में वो एक नहीं आ सकता। कौन एक? जो पतितों को पावन बनाने वाला है, तुम्हारे में भी नंबर वार। क्या सबकी बुद्धि में एक जैसा नहीं बैठा हुआ है कि पतित पावन एक कौन है और कैसे है और कब है? अब तुम समझते हो हम दादे के पोत्रे हैं और बाबा के घर बैठे हैं। पोत्रे किसके हैं? दादे के। पोत्रे हैं तो जरूर साकार शरीर से हैं, बच्चे हैं तो आत्मा रूप में तो बच्चे हो सकते, और पोत्रे हैं तो जरूर साकार रूप में होने चाहिए। दादे भी कैसा होना चाहिए? साकार रूप में। तो किसके घर में बैठे हैं? दादे का वर्षा लेना है तो कहाँ बैठ के लेना है? दादे के बस घर में बैठना पड़े। यहाँ दादा भी मौजूद है, ऐसे नहीं कि बाबा ही मौजूद है। अवतार भी जरूर यहाँ ही लेगा ना। अवतरण माने ऊपर से नीचे आना। पतितों को पावन बनाने के लिए क्या करना पड़े? ऊपर से नीचे आना पड़े। थोड़ी विधे आता सिंहासन काय, ऊंची स्टेज क्यों छोड़ दे? ऊंचे सिंहासन को छोड़ दे और नीचे गड्ढे में क्यों आ जाए? हैं? निकालने के लिए। कोई डूबता है तो डूबे हुए को निकालने के लिए डुबकी लगानी पड़े। लोग क्या कहते हैं, वो डुबकी लगा करके निकालने वाला आता है तो कहते हैं ये खुद भी डूबता है, ये कलंक लगाते हैं। तो बाप बोलते हैं कि कलंक की धर पिछाड़ी कुत्ते भौंकते रहते, जो भौंकते हैं उनको भौंकने दो। परमात्मा बाप इसकी परवाह नहीं करता। तो परम धाम से आते हैं पढ़ाने के लिए, वो हमारा दादा है रूहानी, और सब जिस्मानी दादे होते हैं। तो दादा कहते हैं खुशी में एकदम उछल पड़ना है। क्या? इस खुशी में उछल पड़ना है कि हमारा दादा है रूहानी और बाकी सब होते हैं जिस्मानी। जिस्मानी माने सब देह अभिमानी है, एक है रूहानी स्टेज में रहने वाला। बलराज रजवाड़े बहुत साहूकार है, परंतु वो दादाएं हमको क्या देते हैं? स्थूल धन संपत्ति देंगे क्या? वो स्वर्ग की बादशाही देंगे? नहीं। तो ये बातें अभी तुम समझते हो, सत्युगुण में फिर ये बातें भूल जाती। बायन लक्ष्मी नारायण आदि को भी पता हो रही रहता है कि स्वर्ग के सुख हमको किसने दिए। अगर ये समझें तो फिर ये भी समझें कि इनसे पहले हम कौन थे, तो बड़ी वंडरफुल बात है। लक्ष्मी नारायण को ये पता नहीं रहता है कि राजधानी हमको किसने दी, सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई नहीं जानते। तुम्हारा देवताओं से भी मर्तबा ऊंचा है। क्यों? क्योंकि देवताएं तो बुद्धू होते हैं और तुम होशियार हो। तुम अपने बाप को पहचानते हो जिसे राजा ही मिलती है। देवताओं को पता ही नहीं है कि देवताओं को राजा ही किससे मिली। तो पढ़ाई भी कितनी सहज है। बाबा कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो, किस लिए सहज है और किस लिए कठिन है?